चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर। हर श्वास में बस एक ही पुकार, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ये गुप्त साधना का है पथ, हर श्वास यहाँ अग्नि की कसौटी। कभी तपस्या कभी संघर्ष, तो कभी आत्मा की मौन ज्योति। अग्निपथ पर कदम बढ़ाना है और मोह सब त्याग जाना है। कांटे चुभे या आंधियां उठे, सत्य की इस ज्योति को हर दिल में जगाना है। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर भी मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ये योग अग्नि नहीं केवल जलाती, ये शुद्ध भी करती है हर कण कण। जो भीतर से अंधकार को मिटा दे, है यही अग्निपथ का अमर प्रण। ये अग्नि करती वासनाओं को भस्म, ये अग्नि करती अहंकार का अंत। जो इस मार्ग पर चलता दृढ़ता से, वो पा लेता परमात्मा का अंत। अग्निपथ अग्निपथ चलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। अग्निपथ पर तू नहीं अकेला, भगवान स्वयं संग संग चलते। हर आंसू को मोती बनाते, हर पीड़ा को सहज ही हरते। ये पथ कठिन है पर है अमर, यही मुक्ति का सच्चा द्वार। अग्निपथ ही साधक की पहचान है, यही तपस्वी जीवन का आधार। अग्निपथ अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर। चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर। जहां अंत में ना कोई दुख ना भय, केवल परमात्मा का अमर आश्रय। मैं अग्निवीर डर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर। हर श्वास में बस एक ही पुकार, मैं अग्निवीर। अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर। ये गुप्त साधना का है पत्थर श्वास, यहाँ अग्नि की कसौटी। कभी तपस्या कभी संघर्ष, तो कभी आत्मा की मौन ज्योति। अग्निपथ पर कदम बढ़ाना है और मोह सब त्याग जाना है। कांटे चुभे या आंधियां उठे, सत की इस ज्योति को हर दिल में जगाना है। अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर भी मैं अग्निवीर। ये योग अग्नि नहीं केवल जलाती, ये शुद्ध भी करती है हर कण कण। जो भीतर से अंधकार को मिटा दे, है यही अग्निपथ का अमर प्रण। ये अग्नि करती वासनाओं को भस्म, ये अग्नि करती अहंकार का अंत। जो इस मार्ग पर चलता दृढ़ता से, वो पा लेता परमात्मा का अंत। अग्निपथ चलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तब की लकीर। मैं अग्निवीर। ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर वीर, मैं अग्निवीर। अग्निपथ पर तू नहीं अकेला, भगवान स्वयं संग संग चलते। हर आंसू को मोती बनाते, हर पीड़ा को सहज ही हरते। ये पथ कठिन है पर है अमर, यही मुक्ति का सच्चा द्वार। अग्निपथ ही साधक की पहचान है, यही तपस्वी जीवन का आधार। अग्निपथ जलता रहे ये अंतर पथ, हर सांस बने तप की लकीर। मैं अग्निवीर
ना रुकना है ना झुकना है, बस आगे ही बढ़ना है। सत्य ज्योति का बन कर भी मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर, चल निडर हो ओ अग्निवीर, अग्निपथ ही तेरी तकदीर, जहांत में ना कोई दुख ना भय, केवल परमात्मा का अमर आश्रय। मैं अग्निवीर, मैं अग्निवीर,
ओम शांति। एक व्यक्ति की पत्नी मृत्युशैया पर थी। इस पत्नी ने अपने पति को जीवन भर अपने नियंत्रण में रखा था। अंग्रेजी में एक शब्द है हैंडपेक्ड हस्बैंड। और जब आज वो पत्नी मर रही थी, कहीं ना कहीं उस पति को मन में खुशी थी कि आखिरकार ये जा रही है, आखिर मेरी स्वतंत्रता के दिन नजदीक है। परंतु मरते मरते पत्नी ने कहा, मैं देख रही हूं तुम मन में खुश हो रहे हो, परंतु मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं। मरने के बाद भी मैं भूत बनकर आऊंगी। जिंदगी से पहले, जिंदगी के बाद जीवन बीमा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी हर हरकत पर मैं ध्यान रखूंगी। इसके लिए खबरदार, अगर जरा भी खुश हुए तो। तुम किसको देखते हो और क्या करते हो, मेरी नजर तुम पर रहेगी मेरे मरने के बाद भी। मरती हुई पत्नी ने अपने पति से कहा और वो मर गई। वो पति डर गया, पर बहुत दिन गुजर गए, भूत के कोई चिन्ह नहीं थे और उसको लगा कि अब आखिर मैं स्वतंत्र हो गया, अब मुझे कोई बंधन नहीं, अब मैं वो सब चीजें करूंगा जो मैं कब से करना चाहता था, घूमूंगा फिरूंगा सब करूंगा। कई दिन गुजरने के बाद एक दिन अचानक रात में दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है और वो पत्नी सामने खड़ी है। वो कहती है, मैंने कहा था ना मैं आऊंगी, और आज तुमने सुबह से लेकर शाम तक जो जो सोचा वो सब मुझे पता है, किस किस को तुमने देखा वो भी मुझे पता है। वो एकदम से डर जाता है और वो कहती है, अब मैं रोज रात को आऊंगी तुम्हारे ऊपर ध्यान रखने के लिए। वो डर जाता है और वो वास्तव में आती है और उसे बताती है, आज तुमने किसको देखा, आज तुमने क्या सोचा, यहां तक कि वो उसके स्वप्न भी उसे पता है। अत्यंत दुखी और परेशान वो व्यक्ति एक जैन गुरु के पास जाता है और कहता है, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी भूत बनकर मरने के बाद मेरे पीछे पड़ी है, जब वो थी तब कम से कम मैं स्वप्न तो भी स्वतंत्रता से देख सकता था, पर अब तो उसे मेरा हर स्वप्न पता है, वो 24 घंटे मेरे इर्द गिर्द ही रहती है, मुझे क्या करना चाहिए। वो जैन गुरु कहता है, ये थैली लो, इस थैली में कंकड़ है, उसको जाकर पूछो इसमें कितने कंकड़ है। अगर वो सही बताती है अर्थात वो है, अगर वो झूठ बताती है संख्या, तो हो सकता है ये तुम्हारे ही मन की कल्पना हो। वो थैली लेकर घर पहुंचता है, पत्नी पहले से ही चेयर पर बैठी हुई है और उसको कहती है, मुझे पता है तुम उस ढोंगी जेन मास्टर के पास गए थे, मैं उसको पहले से जानती हूं और मुझे ये भी पता है कि तुमको उसने एक थैली दी है और जिसमें कंकड़ है, और उसने कहा है मुझसे पूछे कि कंकड़ कितने हैं। वो एकदम से घबरा जाता है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी मास्टर ने कहा है तो वो उससे पूछते हैं, हाँ बताओ इसमें कितने कंकड़ है। और जैसे ही वो पूछता है वो गायब हो जाती है, उसके बाद वो कभी नहीं आती। वो व्यक्ति अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आपने ये क्या चमत्कार कर दिया, ये कैसा जादू कर दिया कि अब वो आती नहीं। गुरु कहता है, वो तुम्हारे ही मन का प्रक्षेपण था। इट वॉज द प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन माइंड। वो तुम्हारी ही कल्पना थी और जो जो तुम्हें पता है वो उसे पता था, और तुम्हें ये नहीं पता था कि इसमें कंकड़ कितने हैं, इसलिए उसको भी नहीं पता था। इसलिए जैसे ही तुमने पूछा वो दृश्य हो गई। हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार और हमारे प्रक्षेपण ही हमारे सामने घूम रहे हैं। हमारे ही मन की कल्पनाएं हैं जो हमें सत्य अनुभव होती है। हमारा ही बिलीफ सिस्टम, हमारे ही मन की अवधारणाएं और धारणाएं, जो हमने सोच रखा है ये सुंदर है या असुंदर है, यह अच्छा या अच्छा नहीं, सारा खेल इमेजिनेशन का है, कल्पनाओं का है, प्रोजेक्शंस का है, हमारे ही हेलुसिनेशंस है जो हमें दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, पर है सारा मन का छलावा। इस एक सूत्र को पकड़ना है कि मैं जो हूं ये विचार ही है जो मैंने हो सकता है दूसरों पर प्रोजेक्ट किए हैं, प्रक्षेपित किए हैं, इसलिए वो व्यक्ति मुझे ऐसा दिखता है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी सूक्ष्म घृणा की परिभाषा बाबा ने दी है, ये ऐसा है ये बदलेगा नहीं, ये है सटल हेट्रेट। हेट्रेट की परिभाषा है सेटल्ड एंगर, किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है जो आराम से बैठ जाता है, अंदर घुस जाता है तो घृणा बन जाता है। तो कार्य छोटे छोटे तलों पर करना है, छोटी छोटी बातों पर करना है। सूरज मौन में उगता है, कमल चुपचाप खिलता है, कैसे सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। शक्तियां भी एक लीक होने वाला पाइप नल पूरे टंकी को खाली कर देता है, एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है, चाहे रचनात्मक या विध्वंसक। छोटी छोटी लापरवाही चरित्र का पतन करती है। विकार का संकल्प भी पतन है। हमारे पास शक्तिशाली विचार हो और उन सभी विचारों को क्या करना है, अपने हाथों से लिखने हैं, अपने हाथों से, अपनी डायरी में, जो हमारे अपने हाथों से लिखा जाएगा, जिसका एक एक अक्षर सुलेख हो, इट शुड बी प्रिंट हैंड राइटिंग। जैसे ये लिखा है ये कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा लिखा हो, शक्तिशाली विचार, वो विचार नहीं जो यहां वक्ता ने सुनाए, हो सकता है यहां बैठे बैठे मौन पल में, मौन क्षणों में अचानक कोई एक विचार आए, डाउनलोडेड फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्स, इस विश्व के ग्रंथालय से अपने आप, और वो एक ऐसा विचार हो कि पिछले 5 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से और 10 साल से हम किसी एक समस्या में, किसी एक उलझन में उलझे थे और उसका वो उत्तर हो। इसीलिए किसी भी क्लास में बैठो, चाहे यहाँ या आज के बाद जीवन में कहीं पर भी, मुरली 3 चीजें साथ साथ होती रहे। पहला, सुनना। कैसे सुनना है? संपूर्ण एकाग्रता के साथ, बी ऑल ईयर्स। बुद्धि यहां वहां भागे फिर उसे ले आओ इस पल में, नाउ। सेकंड, लिखते रहना है, अपनी डायरी, अपना पेन, जो जो पॉइंट, जो जो मुद्दे, बातें हमारे लिए नए हैं, हो सकता है उसका भाव पता है परंतु शब्दों की रचना नवीन है, उन शब्दों की रचना को लिखना है। राइटिंग लीड्स टू ब्रेन रिवायरिंग, ब्रेन रिवायर होता है, नए संस्कार बनते हैं और मसल मेमोरी बिल्ड होती है उंगलियों से। इनमें विकर्म करने की मेमोरी है। अपने आप सत्कर्म की मेमोरी जनरेट होगी। और तीसरा, योग। सुबह की अव्यक्त वाणी, योगी जीवन, कर्म योगी, नेचर नेचुरल, देही अभिमानी, ये सारे शब्द थे मुरली में। 1-2 घंटे का नहीं, सतत निरंतर। प्रोफिशिएंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा दक्ष हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए योग में, लंबी लंबी जीत नहीं चाहिए, छोटी छोटी जीत चाहिए। और परिवर्तन कोई ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि कोई शक्तिशाली रिट्रीट में चले जाए और वहां अचानक परिवर्तन हो जाए या फिर कोई चमत्कारी अनुभव हो जाए। परिवर्तन टुकड़ों टुकड़ों में आएगा, परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, छोटी छोटी आदतों से आएगा, छोटे छोटे क्षण ही भाग्य का भवन बनाते हैं, छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी जागरूकता, मूवमेंट टू मूवमेंट अवेयरनेस, लिटिल माइंडफुलनेस। इसलिए जब भी सुनने बैठो तो कैसे सुनो? संपूर्ण एकाग्र चित्त से, और सबसे ज्यादा तो हम तब ग्रहण करते हैं जब वक्ता बोल रहा है तब नहीं, 2 वाक्यों के बीच जो अंतराल है उस पॉज में, क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है, किसी को भी यहाँ बिठा दो तो 2 या 3 घंटा आराम से किसी भी टॉपिक पर बोल सकता है। इतना ज्ञान भगवान ने सबको दे दिया है। इसलिए अनुभव 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 की ऑथोरिटी ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने तुम्हें दी है। सुबह की अव्यक्त वाणी इन्वर्टेड कॉमा, समान की अथॉरिटी तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है इन्वर्टेड कॉमा। 2 अलग अलग जगह सिमिलर वाक्य है। लक्ष्य रखना है केवल सुनने का नहीं। सुनते सुनते ही आत्म अभिमानी स्थिति हो जाए, सुनते सुनते ही किरणें फैलाओ। क्लास सुन रहे पर काम क्या कर रहे? किरणें। हाथ लिख रहे, कान सुन रहे और मन किरणें फैला रहा है। हमें पता नहीं किसके जीवन में क्या चल रहा है। सुबह की अव्यक्त वाणी मायूस, कोई डल है, कोई संस्कार वश है। 3 प्रकार की आत्माएं। हो सकता है यहां ही बैठा हुआ कोई है जो संघर्षरत है। हमारी किरणें उसे मदद करेगी। हम शक्तियों की किरणें चलते फिरते उठते बैठते फैलाते रहे। योग राजयोग बाबा के कमरे के बाहर से चालू होता है। तो आज हम सब भट्टी का ये अंतिम दिन, जाते जाते यहाँ से कुछ लेके जाना है। यहाँ आए, घूमे फिरे, लिखा सुना, एक्टिविटीज़ की, खाया पिया, पिकनिक की, मधुबन गए, योग किया, क्लासेस सुनी, मुरली सुनी, इतनों से मिले। ये सब जो है, अगर हम चाहते हैं कि ये भीतर चला जाए तो उसकी प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। इसलिए यहां से जाने के बाद समझो मेरी रियल भट्टी तो वहां है। इसलिए यहां से जाने से पहले ही वहां की प्लानिंग करके जाना है। आपके पास आज का पूरा दिन है, पूरी रात है। कल शायद निकल जाएंगे या आज रात। जब तक यहां है सोचो जिस उत्तर की मुझे तलाश है वो शायद यही कहीं है, आकाशिक रिकॉर्ड्स कहीं तो है। बस शांत बैठ जाओ और वो उत्तर स्वयं आएगा। माइक्रो मूव्स आज का टॉपिक है हमारा। माइक्रो मूव्स, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे कदम, मेगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी अर्थात, मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता, प्रगल्भता। मैच्योरिटी अर्थात स्थित प्रज्ञता। मैच्योरिटी अर्थात समता। अपनी डायरी खोलेंगे और मैच्योरिटी की परिभाषा चित्र के रूप में लिखेंगे। शब्द ना हो, चित्र। मैच्योरिटी की परिभाषा, पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैच्योरिटी। उदाहरण 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी में हल्कापन इज मैच्योरिटी। इसका क्या चित्र है? चित्र शब्द नहीं लिखने हैं, परिभाषा नहीं लिखनी है, चित्र बनाना है मैच्योरिटी का। चित्र कैसे बनाएंगे? मैच्योरिटी तो एब्स्ट्रैक्ट है। जब एब्स्ट्रैक्ट का चित्र बनाना हो तो हमें मदद लेनी होती है उसके जैसा क्या है, कौन इस संसार में है जो मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है। उदाहरण, कोई प्रकृति का कोई वस्तु बताओ, पहाड़, सूर्य, वो चित्र बनाना है। सोचो मैच्योरिटी का पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन क्या है, अभी अभी बनाओ। राइट द ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योरिटी। ये विचार करने की एक नई विधि है, अपने प्रॉब्लम्स का चित्र बनाना, शब्दों में नहीं चित्र में लिखो, चित्र बनाओ, मैच्योरिटी का क्या चित्र हो सकता है, सोचो और बनाओ। चित्र बनाने के लिए चित्रकार होने की आवश्यकता नहीं है, पवित्रता बिना दबाव के परिपक्वता है, परिस्थितियों में स्थिरता परिपक्वता है, जिम्मेदारी बिना जिम्मेदारी के साथ हल्कापन परिपक्वता है। रुक जाएंगे, स्थित प्रज्ञता परिपक्वता है, समता परिपक्वता है, जीवन में हलचल है, उस हलचल में स्थिर रहना इक्वल टू मैच्योरिटी। अपनी हर भूल से सीखते रहना इट्स मैच्योरिटी। आवर ग्रेटेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। जो अभी अभी ताजा ताजा गलती की ना, वही हमारा सबसे बड़ा कौन है, शिक्षक। उससे सीखना ये मैच्योरिटी है। दो मार्ग है, एक है दुखी होना, उदास होना, गिल्ट में चले जाना, मैंने पाप किया, और दूसरा है ठीक है ये हो गया, अभी मुझे इससे सीखना है और आगे बढ़ना है। ये माइंडसेट इज मैच्योरिटी। जीवन में असंख्य निगेटिव बातें हुई, लोगों ने धोखा दिया, और निगेटिव हो जाना कि ये दुनिया ऐसी ही है, ये इमैच्योरिटी है। सारे डिस्टर्बेंस के बाद भी पेसिमिज्म में भी ऑप्टिमिज्म इज मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का जो चित्र सबने बनाया है, आंखें बंद करके उसको मन की आंखों में देखो, मुझे ऐसा बनना है, तेजस्वी सूर्य, अचल पहाड़, बहती हुई नदी, जो भी जिसने बनाया है। तो आज के इस सत्र में हम 10 ऐसी बातें देखेंगे जो छोटी छोटी, पर वो अगर हमने कर दी तो जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखेगा। हमें बहुत बड़ी संसार पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, हमें छोटी अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है। उदाहरण, किसी ने क्रिटिसाइज किया पर हम शांत रहे, आंतरिक विजय हुई। छोटी छोटी जीत अर्जित करनी है, माइक्रो विन्स, इसको कहते हैं माइक्रो विन। सबसे पहला अमृत वेला एंकरिंग, अमृत वेला उठना और योग करना, ये हम करते हैं, परंतु देयर इज समथिंग कॉल्ड फर्स्ट आवर रूल एंड 5 मिनट रूल। 5 मिनट अर्थात उठते ही हम क्या करते हैं, पहले जो 5 मिनट है उसमें क्या किया, आज ही सोचो, आज जब उठे फर्स्ट 5 मिनट में क्या किया, दैट विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ द डे। उसको ऐसा कर दो कि सबसे पहले तो तुरंत उठते ही मोबाइल ना देखे, तुरंत उठते ही चाहे बेड पर ही बैठ जाओ ध्यान मुद्रा में 5 मिनट, उसके बाद जो कुछ करना है स्नान योग में जाना, पर उठते ही अपने आप को उठाना है। किससे उठाएंगे, पहला है नींद से उठाना, दूसरा है समान से उठाना। तो ये 2 काम करने हैं, पहले तो नींद से उठे और दूसरा समान से, मैं कौन हूं। साधारण कुमार नहीं हूं, अग्निवीर हूं, आदर्श हूं, ब्रह्मचर्य का शिखर हूं, ओजस्वी हूं, तेजस्वी हूं। संसार के भोग और विलास मुझे आकर्षित नहीं कर सकते, यह पहला ही विचार है तो सारा दिन अपने आप बाय डिफॉल्ट ऑटो पायलट मोड पर जाएगा। बाय डिफॉल्ट एक आंतरिक शक्तिशाली स्थिति, और दूसरा है वन आवर रूल। जो लोग अध्यात्म में भी नहीं है उन्होंने ये वन आवर रूल बनाया है साइकोलॉजी में। जीवन की जो समस्या है, जीवन की जो परिस्थिति है, जीवन की जो उलझन है, जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, शारीरिक बीमारियां है, कुछ भी है, उनको पहले एक घंटे में उनके प्रति चिंतन करो कि ये क्या है। जैसे अभी हमने मैच्योरिटी का डायग्राम बनाया, वैसे अपने जीवन की प्रॉब्लम का डायग्राम बनाना है। चित्र शब्द नहीं, क्या बनाना है? डायग्राम, एक पिक्चर, एक स्केच। पेंसिल से बनाओ तो और भी अच्छा। कब? सुबह। वो समय है कुछ सोचो, वो समय है केवल योग नहीं करना है। उस समय मुरलियों में तो हजारों बातें आई है, सुबह सुबह उठ के भाषण लिखो, सुबह सुबह उठ के ज्ञान का मंथन करो। योग के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम है। थोड़ी देर प्राणायाम करो, ब्रेथ अवेयरनेस का अभ्यास करो, खुली हवा में घूमो, वो ऑक्सीजन पूरा प्राणिक फील्ड अंदर जाए। छोटे छोटे प्रयास, दिन भर में कई बार डिस्टर्ब होने का स्वभाव है, डिस्टर्ब होने का स्वभाव। किसी ने कुछ कहा, डिस्टर्ब, इसको कहते हैं सेंसिटिव नेचर। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। दर्द महल, अंदर दुख चला जाता है, छुई मुई, किसी ने कुछ कहा और आंसू बहे, इतना सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव। क्या ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है? उसको कोई भी आकर डिस्टर्ब कर देता है ना। यहां तो अग्निपथ है, इतने कांटे हैं, इतने कांटे हैं, इतने कांटे हैं, चुपते रहेंगे। और अमृत वेला वो टाइम है जहां हमने सोचना है कि ये तो कितनी छोटी बात थी और इसने मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया। मनुष्य सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किससे होता है? दूसरों के व्यवहार से और बोल से। अगर कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, कोई हर्ट करता है, कोई टॉन्ट करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है, अपोज करता है, और वो करने वाला इधर ही हो और योगी हो तो दुख ज्यादा होता है। बाहर वाला कोई करे इतना दुख नहीं होगा, पर ये जो कुछ हो रहा है इसी में स्थिर रहना, अर्थात मैच्योरिटी। मीटिंग हो रही है, हमने कहा प्रोग्राम यहां होना चाहिए, बहन जी ने कहा नहीं यहां नहीं होगा, उस दूसरी जगह होगा, सब ने कहा वहीं होगा, हमने जो प्रपोजल रखा था उसको रिजेक्ट कर दिया गया मीटिंग में। हम क्या सोचते, जाओ तुमको करना है करो, हम जा रहे, जो करना है करो। इसको कहते हैं इमैच्योरिटी। बालक मालक मालिक का पार्ट अभी इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहला है अमृत वेला एंकरिंग, मन को खुला करना है। मंद जो है ना, बंद है, बंद। इसके लिए कमरों में योग करने से अच्छा है खुली हवा में, छत पर जाओ योग करो, वहां बैठो, ब्रीदिंग करो थोड़ा सा, फिर योग की शुरुआत करो। एक व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के पास जाता है और कहता है मेरी मदद करो, हम तीन भाई है। स्वास्थ्य कर्मचारी पूछता है क्या समस्या है, वो कहता है मैं, हम लोग तीनों भाई एक ही कमरे में रहते हैं, पहले भाई के पास 12 बंदर है, उसने पाल रखे हैं पालतू। दूसरे भाई के पास 12 कुत्ते हैं, उसने पाल रखे। मेरा दम घुटता है कमरे में, मैं क्या करूं, हवा नहीं आती है उधर। स्वास्थ्य अधिकारी पूछता है क्या वहां खिड़की है, वो कहता है हां। तो खिड़की क्यों नहीं खोलते, वो कहता है और मेरे 12 कबूतर उड़ गए, उसका क्या, उड़ जाएंगे फिर तो, उसने भी पाल रखे हैं। हमने पता नहीं कितने कबूतर पाल रखे हैं, अपने ही मन में, अपनी ही कल्पनाओं के, अपने ही पास्ट की स्मृतियों के, अपनी ही वासनाओं के, सेंशुअल फैंटेसीज के, और सब बंद है। तो कार्य हमेशा स्थूल से चालू करना है, सूक्ष्म से सीधा गए हो नहीं पाता है। इसलिए मन पर कार्य करने से पहले बॉडी पर काम करना है, छोटे छोटे कार्य। तो सबसे पहला कार्य बताया खुली हवा में, खुली हवा में बैठो, वहां बैठ के योग करो। एक छोटा सा उसमें एडिशन कर दो, जब भी बैठो कमर सीधी, ऐसे बैठ के योग करो एक दिन के लिए, देखो क्या होता है। झुकना नहीं, स्थिर, रीढ़ की हड्डी सीधी। भूल गए फिर से याद करो। सेकंड प्रयोग। तीसरा एक छोटा सा प्रयोग, मुरली क्लास में बैठते हो या कहीं पे भी बैठते हो, सोचो मुझे हिलना नहीं है, बस डायरी पेन है उतना हिलेगा, पैर रख दिए रख दिए, हाथ बाकी कुछ नहीं हिलेगा, स्थिर। देखो मैं कितना देर तक स्थिर बैठ सकता हूं, या बीच में दोपहर में अपने कमरे में जब है अधिष्ठान की मुद्रा में बैठ जाना, ट्रिपल लॉक, स्थिर। बुद्ध को देखा है, महावीर को देखा है, कैसे बैठे अचल तपस्वी की तरह। बौद्धिज्म में अधिष्ठान को पारमी में गिना गया है, 10 पारमियां है बौद्धिज्म में, उसमें एक पारमी अर्थात पुण्य कर्म, उसमें एक पुण्य कर्म है स्थिर बैठ जाना, हिलना ही नहीं बिल्कुल, हाथ भी ना हिले ना पैर हिले, जैसे अचल पर्वत। घड़ी लगा दो, 1 घंटे तक हिलना ही नहीं है, जस्ट सी व्हाट हैपेंस। मन का स्वभाव है हलचल का, मन का स्वभाव है कुछ करने का, मन का स्वभाव है उसको कुछ करना है, उसको कुछ बोलना है, उसको कुछ कुछ तो करना है, कुछ पढ़ना है, जस्ट सी। और एकदम 1 घंटा नहीं, पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अचल बैठना, यह साधना है। इसको कहते हैं अधिष्ठान। हैंड लॉक, आंखें बंद, और पैर लॉक, ट्रिपल लॉक इसको कहा जाता है। बस बैठ जाना, हिलना ही नहीं, स्थिर। तो सबसे पहला है एंकरिंग, दूसरा है ब्रह्मचर्य बिगिंस विथ इमेजिनेशन। ब्रह्मचर्य की शुरुआत कहां से होती है, कल्पना से, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो टूटता है वो किससे टूटता है, कल्पना से टूटता है, फैंटसीज, विजुअलाइजेशंस, हम कल्पनाएं रचते हैं। और ये जो कल्पनाएं है बड़ी सुखद कल्पनाएं, परंतु भ्रामक सुख है, वो ट्रेलर है खाली। अगर पूरी मूवी देख ली जाए काम विकार की, तो उसमें केवल रिक्तता, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, पश्चाताप ही है, केवल इतना ही देखा जा रहा है। कितना अच्छा है ये, इसको खींचो लास्ट तक ले जाओ, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके। जो रिलेशन है अभी जो बना के रखा होगा, शायद बन गया, हमने बनाया नहीं अपने आप, उस संबंध में यदि हम देखें तो उसमें केवल डिस्टर्बेंस है, इनकंपैटिबिलिटी है। वो बना है, उसका कारण हॉर्मोन्स है, पर हमें लग रहा है वो प्रेम है, उसका प्रेम से कोई संबंध ही नहीं था। हॉर्मोन्स दैट हाईजैक द इंटेलिजेंस। और ब्रह्मचर्य दमन से कभी भी संभव नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कारण, क्यों करना है, विजन, रीजन। वो रीजन यदि नहीं है, और बिना रीजन के कोई ब्रह्मचर्य करता है, केवल एक शौक है, मुझे होली बनना है, मुझे पवित्र बनना है, किताबों में लिखा है, मुरलियों में लिखा है, बाबा ने कहा है, करना चाहिए, सब लोग करते, यहाँ का नियम है, यहाँ का रूल है, बिना उसके ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मधुबन शायद नहीं जा पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, अगर ये सारा है तो वो ब्रह्मचर्य, असप्रेस्ड माइंड, एक सप्रेस्ड माइंड जो है इज द पावरलेस माइंड, कमजोर है वो। ऐसा ब्रह्मचर्य या तो अहंकार बनेगा, या चिड़चिड़ापन बनेगा, या तो फ्रस्ट्रेशन। ये तीन गतियां है उस ब्रह्मचर्य की जो दमन से उत्पन्न हुआ है। मन तो कुछ कुछ कर कहता है, मन तो कहता है ये करो वो करो, पर जबरदस्ती पढ़ के वातावरण की वजह से वो आग रूप उसने धारण नहीं किया है। अनलेस एंड अंटिल इट बिकम्स फायर, इट इज फ्रस्ट्रेशन। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्यों, क्यों करना है। केवल इन्होंने कहा इसलिए, किसी किताब में लिखा इसलिए, क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है, क्योंकि योगी तपस्वी सन्यासियों ने कहा, क्योंकि दादियों ने कहा है, ब्रह्मा ने कहा है, शिव बाबा ने कहा, किसी ने भी कहा है, सबको बाजू में, मुझे क्यों करना है, द रीजन। ये रीजन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये रीजन, ये विजन क्लियर नहीं है, तो वो ब्रह्मचर्य विक्षिप्तता की ओर ले जाएगा, मैडनेस, पागलपन, सप्रेस्ड माइंड सब प्रकार की विक्षिप्तता उत्पन्न करता है। संसार में आज अगर देखो तो क्यों ये संसार ऐसा है, इतने विकर्म, कुकर्म, पाप कर्म क्यों है, कहीं ना कहीं सप्रेशन हुआ है। और वो सप्रेस्ड फीलिंग, वो सप्रेस्ड माइंड उस नदी की तरह है जिस पर बांध बांध दिया गया है और रोक दिया गया है उसको। दो गति है, एक तो वो पानी सड़ जाएगा या फिर विस्फोट होगा, ये दो चीजें होगी अगर इस इच्छा को वैसे ही दबा दिया गया। काम इच्छा यदि नीचे बहे तो वो वासना है, परंतु वही इच्छा अगर ऊपर बहे तो तेजस्विता है, वही ऊर्जा है। ऊर्जा का दमन नहीं कर सकते, ऊर्जा को दबा नहीं सकते, ऊर्जा को अगर उसके साथ छेड़छाड़ करोगे तो वो पागल कर देगी, विक्षिप्त कर देगी, मैडनेस। सुबह से लेकर रात तक सब कुछ ठीक है, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, दिन भर सेवाएं की, परंतु जैसे ही बिस्तर पर गए काम का आक्रमण होगा, और वो 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट्स, 23 आवर्स, 50 मिनट्स का ब्रह्मचर्य को भस्म कर देगा, क्योंकि आग है वो आग, ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को यदि कोई लक्ष्य न दिया जाए तो ये ऊर्जा क्या करेगी, ऊर्जा पागल हो जाएगी। एक करोड़पति व्यक्ति अपना पैसा ही खर्च नहीं करता, कहीं मरते समय भी भिखारी रहेगा, वैसा काम ऊर्जा सर्वोच्च, सबसे प्रचंड ऊर्जा है। इस ऊर्जा को दिशा चाहिए, चाहे कला, चाहे सेवा, योग, या कोई खोज, सत्य की खोज, उसे दिशा चाहिए। अगर दिशा हमने नहीं दी, कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया उसको, केवल पालन कर किए जा रहे हैं, तो ऊपर से तो सब कुछ ठीक दिखेगा। Purity is invisible hygiene, अदृश्य स्वच्छता अर्थात पवित्रता, वो दिखती थोड़ी ना है, वो भीतर दिखेगी सब तरफ, परंतु वो सूक्ष्म है। बंद कमरों में दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, तब हम क्या कर रहे हैं, वो चरित्र है। जो दुनिया के सामने हम दिखा रहे हैं वो तो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, दो अलग अलग बात है। एक पर्सनैलिटी अलग, कैरेक्टर अलग। पर्सनैलिटी अगर झाड़ है, पर्सनैलिटी अगर वो जो परछाया है, परछाई वो पर्सनैलिटी है, झाड़ इज व्यक्तित्व रियल। तो हम धोखा भी किसको दे रहे हैं, अंदर एक बाहर एक। बाबा ने 1769 की अव्यक्त मुरली में इसको खौफनाक कहा है, वो लोग जो अंदर एक बाहर दूसरे हैं। इसलिए कुमार जीवन में यदि कोई एकमात्र टॉपिक है जिस पर काम करना है तो वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य संबंधित जितनी किताबें हैं वो सारी पढ़ो, क्योंकि ये केवल आज का टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है। एक, जितने ग्रुप्स होंगे वो सारे ग्रुप्स, जितने अफॉर्मेशंस होंगे, जितनी कॉमेंट्रीज होगी, जितनी क्लासेस होगी, केवल यहां की ही नहीं बाहर की भी, क्योंकि ब्रह्मचर्य पर किसी की मोनोपोली नहीं है। और ब्रह्मचर्य यदि पावरफुल है 100%, तो पवित्रता का ये भवन बहुत शक्तिशाली होगा। परंतु ये जो ऊर्जा है जो लीक हो रही है शॉर्ट्स और रील्स में, उसको वहां रोकना है। डोपामिन डंपिंग एंड डोपामिन लोडिंग, ये दो शब्द है अपनी डायरी में नोट करके रखना है, और यहां से जाने के बाद इस पर रिसर्च करना है। सारा खेल इस डोपामिन का है। व्यक्ति बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू पीता है, क्यों? क्योंकि डोपामिन रिलीज होता है। उसका उस दारू से, बीड़ी से, तंबाकू से कोई संबंध ही नहीं है। क्यों काम विकार में जाता है? उसका उस स्त्री से कोई संबंध ही नहीं है, ना उसके शरीर से कोई संबंध है। सारा खेल तो भीतर ही हो रहा है, हॉर्मोन्स का सिक्रीशंस हो रहा है, डोपामिन सिक्रीट हो रहा है। एक साथ डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, इतने सारे हॉर्मोन्स एक साथ सिक्रीट हो रहे हैं उस एक क्रिया में, कि व्यक्ति के तन बदन में खुशी, आनंद, सुकून मिलता है उसको। और जीवन में इतना तनाव है, और सुकून का यह कितना सहज मार्ग है। वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो वीर्य जो शक्ति है, जो शरीरों को जन्म दे सकता है, वो बहते ही खुशी का अनुभव होता है। और वही तो ट्रैप है। दिस इज द डोपामिन ट्रैप। ये जो हार्मोन है, ये वादे वाला हार्मोन है, वादा निभाता नहीं। वो कहता है ये करो तो बहुत खुशी होगी, खुशी हुई, पर थोड़ी देर के बाद उसका लेवल एकदम नीचे चला जाता है। फिर बॉडी डिमांड करती है वही हार्मोन चाहिए, वही खुशी चाहिए। फिर मुरली पढ़ने में, सेवा करने में और संगठन में उतना डोपामिन नहीं मिल पाता, और फिर एक हंगर उत्पन्न होती है, और वो व्यक्ति अपनी भूख इन वीडियोस द्वारा पूरी करने की कोशिश करता है, और एक द्वंद उत्पन्न होता है। फिर अभी अभी मधुबन में हम लोगों ने एक भट्टी की थी 7 दिन की, कुमारों की। उसका सार एक किताब के रूप में लिखा है। उसमें हर दिन 5 डी एडिक्शन टेक्निक, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन ही है, और सबसे बड़ा एडिक्शन है। इससे बड़ा एडिक्शन तो कोई है ही नहीं। वो दारू, बीड़ी, तंबाकू तो बहुत कम है। मास्टरबेशन इज द ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट एडिक्शन इन द होल वर्ल्ड। ये एकमात्र माया है, उसकी कहीं चर्चा नहीं, उस पर कोई क्लास नहीं, उस पर कोई ओपन फोरम डिस्कशन नहीं। डिस्कशन चल रहा है प्यूरिटी पर, बाप समान बनने पर। दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि इसका संबंध केवल धारणा और ज्ञान से नहीं है, इसका संबंध बायोलॉजी से है, नेचुरल रिफ्लेक्सेस से है जो बॉडी में है, इसका संबंध मेडिसिन से है, इसका संबंध हार्मोन से है। दिस इज रिलेटेड टू इंडोक्राइनोलॉजी। बिना बॉडी और बॉडी के मैकेनिज्म को समझे, बिना साइकोलॉजी को समझे, केवल स्पिरिचुअल से द्वंद ही उत्पन्न होगा। ऑल 3 थिंग्स शुड कम टुगेदर, अध्यात्म, मेडिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, ये 3। इसके लिए इसकी इनडेप्थ स्टडी करनी है। हर दिन 5 मिनट सेलिबसी के बारे में पढ़ना है। इसको एक नियम बना देना है, क्योंकि जिस दिन नहीं पढ़ेंगे उसी दिन गड़बड़ होगी। तो दूसरा बताया ब्रह्मचर्य। तीसरा है सी, सी फॉर कॉन्शियस लोइंग। कॉन्शियस लोइंग अर्थात धीरे धीरे करने का। चलना है धीरे से चलो, खाना है धीरे से खाओ, बोलना है धीरे से बोलो। ये एक प्रैक्टिस करके देखनी है, कॉन्शियस लोइंग, जानबूझकर। लिखना है जल्दी जल्दी में नहीं लिखो, धीरे धीरे लिखो। जब हम कॉन्शियस स्लो डाउन हो जाते हैं, कॉन्शियसली अपने आप सबकॉन्शियस के खिलाफ हमने एक विद्रोह कर दिया है, वहां हलचल चालू हो जाएगी, क्योंकि उसकी आदत है फटाफट करने की, भागने की, कुछ करने की, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये जाना है। स्लो डाउन, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्शियस स्लोइंग, माइंडफुलनेस। खा रहे धीरे धीरे खा के देखो क्या होता है, चल रहे धीरे धीरे, पी रहे धीरे धीरे, बोल रहे धीरे धीरे, लेट्स सी द रिजल्ट। इसका एक्सपेरिमेंट करना है, जीवन एक लेबोरेटरी, हमको एक्सपेरिमेंट करते जाना है। अगर ठीक लगा तो ठीक, नहीं ठीक लगा तो रिजेक्ट, सीधा रिजेक्ट लिस्ट में डाल दो, ये इसने काम नहीं किया। एक्सपेरिमेंट होते रहे और नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहे। साइंटिस्ट क्या करता है, केमिकल्स डालता है ना इसमें, उसमें टेस्ट ट्यूब से देखना है कि अच्छा नीला पीला, इन दैट वे एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक दूसरा अभ्यास है जो करना है, वो है डाउनकास्ट आईज। ये सबसे पावरफुल अभ्यास है। चलते समय नजर नीचे, इधर देखो उधर देखो, और ये वहां जाके प्रैक्टिस करनी है जहां आप रहते हैं, 6 घंटा करके देखना। हम देखते हैं यहां पर नकी लेक पर रोज हम जाते हैं तो कितने लोग घूमते हैं शाम को, पर 3-4 लोग ऐसे उनकी नजर हमेशा नीचे रहती है। और ये तब से हमने अभ्यास चालू किया, पाया कि जिस स्थिति में घूमने गए आते समय भी उससे पावरफुल स्थिति है। नहीं तो हम जहां देखते जाएंगे तो टूरिस्ट दिखते हैं, ये दिखता है, वो दिखता है, सब की तरफ जिसको हमने देखा उसका इंटरप्रिटेशन चालू हो जाता है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये आबू वाला, ये बाहर का है, इधर का है, उधर का है, ये है, वो है, इसने ये किया था, उसने वो किया था। इन आंखों को नीचे, डाउनकास्ट आईज, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आंखें ही तो सबसे बड़ा धोखा देती है। ये काम भी कहां से आते हैं, आंखें, तो आंखों से ही तो आता है। लस्ट इज एन आई डिसीज। ये काम क्या है, आंखों की बीमारी है, वहीं से घुसता है। तो कॉन्शियस लोइंग। अगला डिजिटल डिटॉक्स वेलनेस। नेक्स्ट पॉइंट है दिन में कम से कम 3 बार आधे घंटे के लिए मोबाइल से दूर हो जाना। ये वो समय नहीं रहेगा जो योग का है, वो छोड़ के अलग से डिटॉक्स थोड़े देर के लिए देखो क्या होता है, क्योंकि ये भी एक भयंकर एडिक्शन है, ये देखा गया है। निमहांस एक सबसे बड़ा रिहैब सेंटर है भारत का, न्यूरो का। वहां पे एक अभी अभी एक लड़की एडमिट हुई थी, उसको चैटिंग का एडिक्शन हो गया है, मतलब उसकी उंगलियां जो है ना कंटिन्यूअस टाइप करती है, उसके लिए एडमिट है वो, उसको चाहिए कुछ ना कुछ टाइप करने के लिए, बहुत फास्ट फटाफट टाइप ही करते रहते दिन रात। सो दिस इटसेल्फ हैज बिकम एडिक्शन। और वो एकदम नहीं, मोबाइल सबसे बड़ा साधन है सेवा का, ज्ञान का, योग का, चिंतन का, सब हो सकता है उसमें, परंतु वो जहर भी है, दुधारी तलवार है। तो दिन में 3 बार आधे घंटे के लिए क्या कर देना है उसको, बाजू, वो देखते हुए किसका क्या जॉब है, परिस्थितियां, सब कुछ। कोई चिंतन करना है, एक पॉइंट ले लो मुरली से और चिंतन करो, क्या है क्या है क्या है, सोचो इसके विषय में, ये क्या है। जैसे मुरली से आज का एक ही शब्द ले लिया, जिगरी प्यार, मुरली में एक जगह आया है बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। जिगरी एक शब्द लो और चिंतन करो, बिना मोबाइल की हेल्प के चिंतन। सो दिस इज ऑल्सो स्मॉल मूव। छोटे छोटे अभ्यास बनाने हैं, छोटे छोटे खुद ही क्रिएट करने हैं अभ्यास, और रोज नए नए अभ्यास, और जो अच्छा लगा फिर उसको ऊपर मास्टरी करना है कि ये बहुत अच्छा है, इसको मैं अगर आगे ले जाऊं तो ये मेरे बहुत काम का है। तो डिजिटल उसके बाद में है। ई, अर्थ कॉन्टैक्ट थेरेपी। अर्थ कॉन्टैक्ट थेरेपी, हमारे पांव जमीन से टच हो, हमारे पांव जो है किससे टच हो, जमीन से। इसको कहते हैं बेयर फुट वॉकिंग, इसको कहते हैं ग्राउंडिंग। एक बड़ी किताब लिखी गई है संसार में ग्राउंडिंग नाम की, पूरी किताब है। ऑफिसेस में पैड्स रखे जाते हैं पैरों के नीचे ग्राउंडिंग के लिए, और ग्राउंडिंग जो है हो सके तो मिट्टी पर, सूखी मिट्टी हो, घास ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि घास भी एनर्जी को खींच लेता है, वो एक उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। बट यहां जब हम बात कर रहे हैं ग्राउंडिंग की, बेयर फुट वॉक की, तो रेत हो तो चलेगा, सूखी मिट्टी हो तो बेस्ट, एटलीस्ट आधा घंटा चलना है, और चलने के तुरंत बाद पैर धोने नहीं है, थोड़ी देर रहने दो, मिट्टी चिपकी हुई, 10-15 मिनट के बाद में पैर धोना है। फायदा, सबसे पहला प्रकृति का सानिध्य मिलेगा, दूसरा चिड़ियों की आवाजें, तीसरा सूरज की किरणें पड़ रही है, चौथा विटामिन डी और मेडिकल फायदे, अगला फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन, पैरों में चुभते हैं ना थोड़ा थोड़ा, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो एक अलग बात है, कांटे वगैरह निकाल दो, और फिर लोग ऐसा ट्रैक क्रिएट करते हैं, क्योंकि अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके साथ फिर सोमान को जोड़ो, धरती की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है, मेरे पैरों से पवित्रता की ऊर्जा धरती को जा रही है, उसमें हम दे भी रहे, लेन देन कर रहे हैं दोनों। और ये करते ही जिनको अनिद्रा की बीमारी है, नींद ही नहीं आती है, रात रात भर ओपीडी में जवान लोग आते हैं, कहते कमजोरी है, कमर में दर्द है, जो बूढ़े वाले सारे सिम्टम जवानों में है, बड़ा दुख होता है ये सुनकर, और नींद नहीं आती है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते, अब करेंगे क्या, अंधेरा, लाइट बंद, हाथ में मोबाइल। संत ज्ञानेश्वर की मूवी तो नहीं देखेंगे ना, क्या एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से शुद्र कुमार, इतनी देरी है क्लिक की। बेयर फुट वॉकिंग, जिनको नींद नहीं आती, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है नींद पर, अच्छी नींद आने लगती है, क्योंकि सारे पॉइंट्स नीचे के स्टिमुलेट हो जाते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है, कहता है मुझे अनिद्रा की बीमारी है, मुझे नींद नहीं आती। कहते हैं कब नींद नहीं, कितनी घंटे सोते? वो कहता है रात में 10 घंटा सो जाता हूं बिना करवट बदले, फिर नाश्ते के बाद 2 घंटा सोता हूं खर्राटे लेते हुए, पर दोपहर जब ऑफिस में जाता हूं और खाना खाता हूं उसके बाद नींद नहीं आती, उसका कुछ करो। यह है प्रॉब्लम, माइंड का एक रिवायरिंग हो गया है, उसको इतना चाहिए तो उतना ही चाहिए, वो भी एक बिलीफ सिस्टम हो गया है, मुझे ये सब मिलेगा तो आराम मिलेगा। हमें क्रांति अर्थात विद्रोह है अपने ही स्वभाव के खिलाफ, जो एक पैटर्न हमने क्रिएट किया है सबकॉन्शियस में, उसको तोड़ना है। परंतु हमारे अंतर मन को सडन परिवर्तन बिल्कुल पसंद नहीं, उसको अगर कहो ये खाना है वो नहीं खाना है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसे लोगों से नाराज होता है, वो वहां से आ रहे थे हम इधर से जाएंगे, ऐसे बिल्कुल उसे पसंद नहीं है, उसे धीरे धीरे, उसे कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, जिसमें आरामदायी दिनचर्या है, जो पहले से चालू है ना हमारा वही चलने दो। अगर कोई आके हमारे डिस्टर्ब करता है हमें बिल्कुल दुश्मन दिखता है, जो उठाता है ना मुर्गा उसके साथ क्या किया जाता है, जगाने वालों को। तो कौन जगाएगा दूसरा, हमें खुद ही खुद को जगाना है, खुद ही खुद को जगाना है। जाग जाग जाग, हे योगी उठ, खुद ही खुद से बात करनी है, ऐसे बात करनी है, अपना नाम जोड़ना है, हे तपस्वी उठ। तो कौन सी पॉइंट चल रही थी, बेयर फुट वॉकिंग, ग्राउंड जी, अर्थ ई फॉर, उसके बाद है एफ, फ्रूट बिफोर फायर, फ्रूट बिफोर फायर। तीनों ही बार पक्का हुआ भोजन अगर लेंगे तो ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन है। ब्रह्मचर्य कठिन है, धीरे 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 जीवंत ऊर्जा से जुड़ना है। यह शरीर 2400 घंटे डाइजेशन मोड पर ही रहेगा, पचाते ही रहेगा, वो खाते ही रहेगा, पचाओ खाओ और पचाओ, खाओ और पचाओ, उसको रेस्ट ही नहीं है। और फिर बीमारियां, वो एक अलग, जैसे कोई बस है और बस से अभी पुराने पैसेंजर उतरे ही नहीं है तो नए पैसेंजर घुस रहे, क्या होगा? अभी भी खाया है, अभी भी भरपेट नाश्ता, फिर तुरंत दोपहर में खा रहे, फिर वापस खा रहे, फिर बीच में और भी खा रहे, कंटिन्यूअस खाने की प्रोसेस चल रही है। इसमें ब्रह्मचर्य सूक्ष्म ऊर्जा है। जितना उत्तेजक इस देह में डाला जाएगा उतना वीर्य स्खलन होगा। वीर्य स्थानांतरण एंड वीर्य स्खलन, ये दो पॉइंट्स है। वो हिल तो जाएगा, जिसको अत्यंत तीखा, अत्यंत मसाले, अत्यंत गरम, ये सब, और अति योगी अर्थात मितहारी, इसके लिए यहां से जाने के बाद अपना ही एक डाइट प्लान बनाना है। ये करता है, वो करता है, इसने किया, उसने किया, सबको रखो बाजू में। खुद हमें अपने शरीर का पता है कैसा है, अपनी दिनचर्या पता है, धीरे धीरे प्रयोग करते जाना है। अगर तीन तीन बार ले रहे पका हुआ तो एटलीस्ट सुबह वाला रिप्लेस बाय फ्रूट, फ्रूट बिफोर फायर। और ये करते ही सबसे बड़ा जो फायदा होगा, महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि जब मैं अफ्रीका में था और 6 महीना केवल फल पर था, ब्रह्मचर्य मेरे लिए सहज हो गया। ये उदाहरण है। अपने आप कोई उत्तेजना ही उसमें जा नहीं रही है, कोई नमक उसमें नहीं घुस रहा है, कोई तेल उसमें नहीं जा रहा है, कोई मसाले उसमें नहीं जा रहे है। हेवीनेस नहीं है ग्रेन्स की, जो धरती तत्व है, जो धरती से जोड़ता है। शरीर ऊर्जावान है, मन स्पष्ट है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं, आर पार व्यक्ति देखने देखता है, नहीं तो एक ट्रैप में रहता है कुक्ट के, एक उसके सर्कल के बाहर नहीं निकलता है। तो फायर, उसके बाद है जी, गैप, गैप रिस्पॉन्स टेक्निक। तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना है, धीरे धीरे। क्रोध आया, वेट, हो सकता है ये आर्गुमेंट हो गया, वेट, गैप रिस्पॉन्स, थोड़ा सा गैप दे दो। जॉर्ज गुरजीएफ है, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मेरे पिताजी मरते समय मुझे एक बात बता के गए और उन्होंने कहा कि बेटा एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें क्रोध आए ना, 24 घंटे के बाद एक्शन लेना, कोई भी, तुरंत नहीं लेना। तुरंत क्रोध की अवस्था पागलपन की अवस्था है, उसमें कोई भी जीवन का बड़ा निर्णय मत लेना। 24 आवर्स बीत जाने दो, फिर सोचेंगे जो करना है, तुरंत नहीं लेना है। बड़े निर्णय जो है एटलीस्ट 3 अमृत वेला, 2 से 5 वाले, देखो बाबा कुछ टच करता है ऊपर से, कुछ तो करेगा, उठ जाओ 1:30 बजे, 2 से 5 एवरीडे 3 डेज। उसके बाद में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो दिस इज अ स्मॉल मूव, एक स्मॉल मूव है ये, पर इसमें कुछ तो निकलेगा, वहां समर्पित कर देना है, देखो वो क्या कहता है। तो गैप, उसके बाद में एच, हिडन, ट्रिगर मैपिंग, दिस इज कॉल्ड हिडन ट्रिगर मैपिंग। जो भी गलतियां है या सिंस है, विकर्म है, उनके ट्रिगर्स होते हैं, उत्तेजक, उत्तेजक, जैसे अकेलापन, जैसे बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट है, अकेलापन आ जाता है, कमरे में अकेला है, अकेले है, यह अकेलापन ट्रिगर है काम वासना का। कामुक चित्त नहीं है, मन बहुत पवित्र है, पर अकेलापन, स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग। गूगल का जो सीईओ है, सीईओ, उसने खुद लिखा है कि डू नॉट एंटर गूगल विदाउट अ पर्पस, इंटरनेट पे बिना पर्पस के जाना ही नहीं है। कोई पर्पस है, कुछ ढूंढना है, कोई नया शब्द आया है, जिगरी, मुरली में आया जिगरी प्यार, जिगरी मतलब क्या, अर्थ ढूंढो, ढूंढ के हो गया कि वापस आ जाओ, नहीं तो 1 क्लिक 2 क्लिक 3 क्लिक 4 क्लिक चालू कर, शुरुआत किया था 100% ब्रह्मचर्य कैसे पालन करे, वो ढूंढने से। टेक्निक्स टू फॉलो 100% ब्रह्मचर्य। अच्छा फिर यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, और कहां के कहां निकल गए, पता ही नहीं चला ये चालू कहां से किया था और एंड कहां किया। बिना पर्पस के एंड नहीं करना है, और पर्पस पूरा होते ही तुरंत बाहर निकल जाना है, नहीं तो वो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। वो गया, चला तो गया पर निकल नहीं पाया। फिर हिडन ट्रिगर मैपिंग, इसको क्या कहते हैं, हिडन ट्रिगर मैपिंग। ट्रिगर्स कौन कौन से है, अकेलापन ट्रिगर है, फ्री इंटरनेट है, अब मोबाइल में डेटा बचा है, क्या करूं। जैसे माताएं होती है ना, खा लो ना, खा लो ना, घर घर पे बोलती है ना माता, खा लो ये तो, नहीं तो फेंकना पड़ेगा। वैसे अभी डेटा है, क्या करे, कुछ तो कर, वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो 2 घंटा बचा है। लोग हमारे पेशेंट आते हैं, वो एक पेशेंट ने क्या किया, एक गोली रोज खानी थी, रोज 3-3 खाई। हमने कहा ऐसा क्यों किया, बोले उसकी एक्सपायरी डेट थी और इतनी महंगी दवा है तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे जाने देंगे। सो इट्स ऑल्सो लाइक दैट। एच फिर है नेक्स्ट, इनविजिबल विक्ट्री कलेक्शंस। छोटी छोटी जीत अर्जित करके उसका कलेक्शन रखना है, छोटी छोटी जीत। जैसे किसी ने डांटा, हमारी गलती नहीं थी, फिर भी हमने सुन लिया, जीत हुई एक। बाहर से तो संसार के लोग कहेंगे कावर्ड, ये कमजोर है, पर भीतर से जीत हो चुकी है। पूरा एक राउंड लगा के आ गए पर नजर नीचे थी, जीत हो गई। वो टेम्प्टेड टेम्प्टेशन वाली सिचुएशन में, जिस टेम्प्टेशन में हमने हमको हमेशा हरा दिया था, पर आज हम उसमें गए और आराम से निकल के आ गए, ये जीत हो गई। और ये दूसरों को पता ही नहीं चल रहा है, दूसरों को तो पता ही नहीं। एक बिस्तर पर गए, बाबा की याद में सो गए और उठे अपने आप बिना अलार्म के, जीत हो गई। कितनी बड़ी जीत हो गई, ये किसी को दिखाने का नहीं है। दीज आर हिडन विक्ट्रीज, इनविजिबल विक्ट्रीज है ये। ऐसे कलेक्शन जमा करने हैं, छोटी छोटी जीत, हल्की हल्की जीत, उसको जमा करते जाना है। और लास्ट पॉइंट जे, जंक डोपामिन डिटॉक्स। जिसने इस डोपामिन को ट्रेनिंग दे दी, डोपामिन ट्रेनिंग इज डेस्टिनी ट्रेनिंग, उसने अपने भाग्य को ट्रेनिंग दे दी। ये जो हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है डोपामिन, जो खुशी का हार्मोन है, वो डंपिंग कब होता है, जब शॉर्ट्स रील्स देखते हैं, कोई एक्साइटमेंट वाली चीज देखते हैं, करते हैं, तब वो एकदम ऊपर चला जाता है और एकदम खुशी मिलती है, और फिर वो नीचे आ जाता है। और फिर डोपामिन लोडिंग अर्थात ये जो छोटे छोटे काम है, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब चीजों में भी डोपामिन रिलीज होता है, परंतु कम कम रिलीज होता है। पर हमको उसकी जब आदत पड़ जाती है तो फिर ये व्यर्थ लगने लगता है। इसके लिए एक रिसर्च है, उसने कहा है कि शाम तक, ये बाहर वालों का रिसर्च है, स्पिरिचुअल लोगों का नहीं, उसमें रिसर्च में कहा है साइकोलॉजिस्ट ने कि शाम तक रील्स और शॉर्ट्स देखना ही नहीं है, 6 बजे तक, 6 बजे के बाद देखो, क्योंकि दिन के काम फिर होंगे नहीं आपसे। अगर सुबह सुबह देख लिया, एक्साइटमेंट वाला, न्यूज देख लिया, वायलेंस देख लिया, मूवी देख ली, ट्रेलर देख ली, उसमें एकदम डोपामिन चला गया ऊपर, अब फिर बाद में मुरली, उसमें ना तो चित्र है, उसमें वही शब्द है, उसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, ना कोई जोक आ रहा है, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई ऐसा एकदम अचानक एक रहस्य खुल रहा है जैसे टीवी सीरियल्स में खुलता है, एक ने हाथ रख दिया, एपिसोड एंड, अभी टू बी कंटिन्यूड, तब हमें पता है वो क्या है, कौन सा किसने हाथ रखा। यही तो स्ट्रेटेजी है, इसको कहते क्लिफ हैंगर्स। मूवीज होती है ना, दरवाजा खुलता है, अंधेरी छाया, द एंड, एपिसोड 1, अभी एपिसोड 3 के लिए तुमको रुकना पड़ेगा 24 घंटे, आओ, दे क्रिएट एक्साइटमेंट, ऐसा एक्साइटमेंट इसमें नहीं है, इसलिए ये डल फील होता है। तो हमने टोटल 10 बातें देखी, ये 10 बातें एक पेपर पर है, वो आपको दे दिए जाएंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट था अमृत वेला एंकरिंग। तो अमृत वेले की तैयारी रात से ही चालू कर देनी है, जितना ज्यादा जागते रहेंगे उतना अमृत वेला डिस्टर्ब होगा, इससे पहले भी सुनाया था, हॉस्पिटल में बहन जी आए थे विदेश की, क्लास करवाया। एक अनन्य भाई था जो सेंटर पर आता था, समर्पित भाई, बहुत समय से बहुत अच्छी सेवा करता था और बहुत क्रिएटिव माइंड था जिसका। और कुछ दिनों से वो डल लगने लगा, बात नहीं करता किसी से, आके बैठता है। उससे दीदी ने पूछा हाउ आर यू, तो कहता है आई एम ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम वगैरह वगैरह करता था। फिर ऐसा बहुत समय तक चला कि उसकी वो जो इंटरेस्ट था उसको सेवाओं में सेंटर के, वो नहीं हो रहा था। तो फिर एक बार एक बहन जी उसके सामने बैठे और उससे पूछे बताओ क्या है। तब उसने बताया कि मुझे रात को यूट्यूब देखने की एडिक्शन चालू हो गया है। 10 बजे बैठता हूं तो कब 11-12 बज जाते पता ही नहीं चलता है, परंतु आदत तो पुरानी है, 40 साल का योगी है, अपने आप अमृत वेला नींद खुलती है। योग भी करता हूं पर माइंड ऐसा डल रहता है, सुन हुआ है, क्योंकि जो देख रहा है वो सारा कंटेंट घुस रहा है अंदर, वो तो ब्रेन को ही डल कर देता है। तो सबसे पहला कार्य करना है अमृत वेला। दूसरा बताया बी फॉर ब्रह्मचर्य स्टार्ट्स इन द इमेजिनेशन। जैसे काम विकार का इमेजिनेशन है, वैसे प्यूरिटी के नए नए इमेजिनेशन क्रिएट करो। प्यूरिटी की नई नई रोज कॉमेंट्री लिखो, नई कॉमेंट्री जो आज तक किसी ने नहीं कराई, जो किसी ने सोची भी नहीं ऐसी कोई कॉमेंट्री, और वो नई आइडियाज आएगी प्रकृति में। एकांत में जाके बैठो, नई आइडियाज आएगी, इतनी नई आइडियाज की जो आज तक सोचा ही नहीं कि आपने कि ऐसा भी हो सकता है। सो सेकंड, थर्ड पॉइंट था कॉन्शियस स्लोइंग, कॉन्शियसली स्लो डाउन। जब अपने को लग रहा है भाग रहे, स्लो डाउन करके देखो, क्योंकि शरीर का इफेक्ट माइंड पर होता है। शरीर स्लो डाउन होते माइंड भी स्लो डाउन हो जाएगा, नहीं तो माइंड रेसिंग रहता है। तीसरा, चौथा डी, डिजिटल डिटॉक्स वेलनेस। क्या करना है, बीच बीच में इससे दूर रहने की कोशिश करनी है। सेवाएं है, सब कुछ है, फिर भी जैसे अभी क्लास में है तो मोबाइल नीचे रख दो या अलग रख दो एंड देखो व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट ई फॉर अर्थ कॉन्टैक्ट थेरेपी, हमारे पैर नंगे पांव धरती पर चलना, जैसे किसान चलता है ना, कैसे उसकी मिट्टी में पांव लगते हैं, वो बहुत खुशी मिलती है उससे, उससे भी डोपामिन रिलीज होता है। तो डोपामिन का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। सबसे बड़ा तो काम विकार है, ये सब शॉर्ट्स एंड रील्स है, डिजिटल वर्ल्ड है, पर ये सब एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, रन करना, डोपामिन रिलीज होता है, नए विचार आते हैं, थॉट्स। रनिंग करो, अपना नाम दे दो मैराथन में और प्रैक्टिस करना चालू करो, 1 किलोमीटर, 1K, 2K, 5K, 16K, 20K, 21K। महाराष्ट्र में जो पुलिस कमिश्नर है, क्या नाम है उनका, वो रोज 21 किलोमीटर रन करते हैं, विश्वास नागरे पाटिल, यस, उनका हर दिन 21 किलोमीटर रनिंग है पर डे का, विश्वास नागरे, किताब भी लिखी है एक उनकी मराठी में। नेक्स्ट फायर, फ्रूट बिफोर फायर। अगला गैप रिस्पॉन्स टेक्निक, गैप देना है थोड़ा सा, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करना है किसी को भी, कोई फोन पे कॉल करता है और डांटना चालू करता है, शांत सुन लो, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हिडन ट्रिगर मैपिंग, अपने सारे ट्रिगर्स लिख के रखो कि ये ट्रिगर है जिससे वो इच्छाएं जागती है, और फिर उन पे काम करो। नेक्स्ट कलेक्शन, हिडन विक्ट्री कलेक्शन, और लास्ट जंक डोपामिन। तो स्क्रॉलिंग को कम, ये सब चीजें कम करते जाना, तो ये सारे माइक्रो मूव्स हमको कहां लेके जाएंगे, मेगा मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी एक सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है जो भीतर आएगी, हम खुद ही सीखेंगे, किसी को देखने दिखाने की उसमें कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी ये 10 बातें थी, ये सारी 10 पॉइंट्स आपको दे दी जाएगी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निच पतवार। तूफानों से डरना नहीं है, लिव डेंजरसली, खतरों में जीना। कंफर्ट जोन में तो सब जी सकते हैं, परंतु कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जीना, और ये तो कुमार जीवन है। अच्छा, ओम शांति।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार,
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
आज सिंधु ने विश्व गला है,
लहरों का यौवन मचला है,
आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
लहरों के स्वर में कुछ बोलो,
इस अंधड़ में साहस तो लो,
कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
ये असीम निज सीमा जाने,
सागर भी तो ये पहचान, कब थकता है,
जब तक सांसों में स्पंदन है
उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार,
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार,
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
आज सिंधु ने विश्व गला है,
लहरों का यौवन मचला है,
आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। कुछ बोलो,
इस अंधड़ में साहस तो लो,
कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार।
है,
जब तक सांसों में स्पंदन है
उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार,
तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।